मोती चिबचे चिबाबा चिबचे चिबाबा चिबचे चिबाबा चिबचे चिबाबा चिबाबा बोबड़ी बाबा।
यह तो था जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया 1967 में आई विज्ञान कथा पर आधारित हिंदी फिल्म वहां के लोग का एक गीत, जो यहां और वहां यानी मंगल के लोगों के बीच के अंतर को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करता है। सामी अहमद खान, जो नई दिल्ली स्थित युवा लेखक, साथ में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसी विषय पर शोध भी कर रहे हैं। सामी, सबसे पहले तो SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
डॉक्टर सरवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए फखर की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
तो सामी, सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को आप ये बताएं कि क्या 1960 से पहले भी भारतीय सिनेमा में विज्ञान कथा शैली से प्रभावित होकर फिल्में बन रही थी, और यदि हाँ तो उनमें किस तरह के विषय या समस्याओं को सामने लाया जा रहा था?
देखिए, इसके पहले 1960 से पहले जो फिल्म बन रही थी हिंदी साइंस फिक्शन फिल्म, क्योंकि उस वक्त तक बॉलीवुड SF फिल्म उनको बोलना शायद मुनासिब नहीं था, तो हिंदी SF फिल्म मैं कहूंगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन जिस स्ट्रेंथ से साइंस फिक्शन ने हॉलीवुड को परमिएट किया था और वहां 20s, 30s, 40s से ही बिल्कुल ओवर्ट साइंस फिक्शन फिल्म बननी शुरू हो गई थी, हमारे यहाँ उतना नहीं था। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो आज भी आप लोगों से पूछेंगे कि हमारी पहली साइंस फिक्शन फिल्म कौन सी थी, हिंदी पहली साइंस फिक्शन फिल्म, बॉलीवुड पहली साइंस फिक्शन फिल्म कौन सी थी, तो आज भी 70% लोग यही बोलेंगे कि 2003 की कोई मिल गया हमारी पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी। और ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कहना, लोग कुछ मुगालते में है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि 1967, जिसको मैं एक वॉटरशेड साल मानता हूँ, उस साल दो ऐसी फिल्में आई थी जिन्होंने हमारा साइंस फिक्शन फिल्म बनाने और देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया था। पहली फिल्म का नाम था वहां के लोग, जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरी फिल्म का नाम था चांद पर चढ़ाई। दोनों 1967 की फिल्में हैं और दोनों हिंदी साइंस फिक्शन फिल्में हैं, और पॉलिटिक्स से, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1947 के बाद जब भारत को आजादी मिली, तो भारत का जो एक कोर जो आइडियल्स थे वो थे नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, सबको साथ लेकर चलना, साउथ एशिया में एक साथ मिलजुल के रहना। इसका पहला धक्का जो भारत को लगा वो था 1962 चाइना वॉर, दूसरा धक्का था 1965 इंडो पाक वॉर, और तीसरा धक्का 1971। तो 1962 और 65 की के जो दो जंगें थी, इसके बाद से एकदम एक मिलिटरिस्टिक हीरो का धीरे धीरे राइज होना शुरू हुआ पॉपुलर कल्चर में हिंदी SF फिल्म के थ्रू, और इसीलिए वहां के लोग आप विश फुलफिलमेंट इसे कह सकते हैं, क्योंकि चाइना वॉर जो था 1962 का, उसके ऊपर ये फिल्म थोड़ा सा आधारित है, लेकिन ये विश फुलफिलमेंट करती है। जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भारत 1962 का वार इसलिए हारा था कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और इसीलिए शायद वहां के लोग में, जो कि मैं कहता हूँ भारत का इंडिपेंडेंस डे का जो हॉलीवुड फिल्म थी वो, ये भारत की इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे भारतीय वायुसेना UFOs के साथ डॉग फाइट्स करती है और UFOs को हराती है। तो ये एक डायरेक्ट पैरेलल है जो कि लिया गया है। और जो सेकंड फिल्म थी चांद पर चढ़ाई 1967 की, इसमें दारा सिंह थे, इसमें भी आप देखेंगे तो जो 1965 में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन जिब्राल्टर था, पाकिस्तानी आर्मी को कश्मीर में लैंड किया जाए और फिर कश्मीर को रेसल किया जाए, उसी सेम थीम को ये इंटरप्रेट, री इंटरप्रेट करती है ये फिल्म चांद पर चढ़ाई, क्योंकि इसमें अर्थ जो है, जो दुनिया है वो बन जाता है भारत, मार्स बन जाता है पाकिस्तान, वहां का एक इवल वारलॉर्ड है, और मून बन जाता है कश्मीर। तो दोनों अर्थ और मार्स, यानी भारत और पाकिस्तान, दोनों मून को यानी चांद को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं, और जबकि बारहतू चाहता है मिलिट्री एक्शन करके, बारहतू जो है वो वारलॉर्ड है मार्स का, जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, और भारत चाहता है, कैप्टन आनंद जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो अर्थ का होता है, वो चांद की राजकुमारी से प्यार करने लगता है। तो ये भी एक क्लासिक था कि किस स्फीयर में कश्मीर जाएगा, किस स्फीयर में चांद जाएगा। और तो बहुत ज्यादा ही पॉलिटिक्स से प्रभावित रही है हमारी शुरुआती SF फिल्में। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बात तो खैर मैं मानूंगा कि हमारे यहाँ साइंस फिक्शन फिल्में उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी, लेकिन इसका कारण शायद ये है कि एक स्पेकुलेटिव फिक्शन की ट्रेडिशन जो है वो भारत में बहुत ज्यादा मजबूत रही है। और अगर स्पेकुलेटिव फिक्शन में ही आप फैंटेसी को गिनते हैं, माइथोलॉजी को गिनते हैं, साइंस फिक्शन को गिनते हैं, साइंस फिक्शन भले ही ना बनना हो, लेकिन फैंटेसी और माइथोलॉजी बहुत फिल्में बनी हैं, और जो अदर्स जो होते हैं, जो साइंस फिक्शन के अदर्स जो होते हैं, जो परग्रही होते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते हैं, एलियन होते हैं, और जो फीलिंग्स वो जनरेट करते हैं एक ऑडियंस में या एक व्यूवरशिप में, वही सेम फीलिंग्स भारतीय स्पेकुलेटिव फिक्शन में, फैंटेसी माइथोलॉजी में राक्षस और दैत्य और लोग से इस किस्म के माइथोलॉजिकल क्रीचर्स जो है वो जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब थिंग्स आर चेंजिंग।
आपके अनुसार भारतीय पौराणिक कथाएं कितना प्रेरित करती हैं आज के बॉलीवुड की विज्ञान कथाओं को?
मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा करती हैं। माइथोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। दो एग्जांपल मैं इसके देना चाहूंगा, 2001 की फिल्म रावण और 2012 की फिल्म जोकर। आप अगर रावण को देखेंगे तो ये एक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण है, जिसमें अच्छाई और बुराई के खिलाफ जंग होती है और अंत में विजय अच्छाई की होती है। और इसमें जितने भी सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं इस फिल्म में, जो एलिमेंट्स वो रामायण से लिए गए हैं, और इट्स आप देख सकते हैं इट्स एन ओवर बैटल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ गुड एंड बैड। और वहीं 2012 की फिल्म जोकर, जिसमें अक्षय कुमार ने लीड रोल किया है, इसमें आप अगर देखेंगे तो ये फिल्म ऐसी है जो साइंस फिक्शन जॉनर को अपने टर्न्स इट ऑन इट्स हेड। ऐसा इसलिए होता है कि एक वैज्ञानिक अमेरिका से भारत जाता है, भारतीय मूल का वैज्ञानिक है, अपने गांव के लिए काम करने के लिए। उस गांव का नाम है पगलापुर। अब सोशियो इकोनॉमिक जो वहां का माहौल है, जो वहां त्रुटियां हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए और उस गांव को ग्लोबल मैप पे लाने के लिए जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि चलिए हम क्रॉप सर्कल्स बनाएंगे। तो इन्होंने लोगों के साथ मिलकर वहां क्रॉप सर्कल्स बना दिए। अब जब टीम इन्वेस्टिगेट करने आई तो इनको मालूम चला कि यहां तो एलियंस आए ही नहीं थे, ये इन लोगों ने फालतू के क्रॉप सर्कल बनाए हैं अपने गांव पे ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो फिर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर एक इंसान जाके मंदिर में ये प्रार्थना करता है कि मतलब परग्रही आ जाए, और परग्रही असलियत में भगवान की प्रार्थना सुन के आ जाते हैं। और जो परग्रहियों का जो यान जो होता है, यूएफओ जो होता है, दैट इज शेप्ड लाइक अ शिवलिंग। एंड द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल का आप अगर उसका एक फीचर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम माइथोलॉजी से उठा के आपने भी कैरेक्टर यहाँ रख रखा है। सो दिस फिल्म एक्चुअली कन्फ्लिक्ट्स माइथोलॉजी एंड साइंस फिक्शन, और ये कहना ये चाहता है कि साइंस का एक प्रेमसी जो हमेशा से रहा है, उसको इंडिया जो बॉलीवुड फिल्म है वो अप्रोप्रिएट करके पूरा घुमा भी सकते हैं।
सामी, आपने बात की पौराणिक कथाओं की, या हम अगर भारतीय परिदृश्य में बात करें हमारी लोक और धर्म कथाओं की, तो उसमें डेमीगॉड्स या सुपर ह्यूमंस का जिक्र अक्सर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें विज्ञान कथा वाली फिल्मों की, तो वो डेमीगॉड्स रिप्लेस किए जाते हैं सुपर हीरोज के साथ। तो भारतीय बच्चों के लिए क्या ऐसी कोई सुपर हीरो वाली फिल्में हैं या सुपर हीरोज हैं?
जी बिल्कुल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1967 में वहां के लोग आई थी, जिसमें एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स जो है वो अदर्स थे, वो एक ऐसा थ्रेट रिप्रेजेंट करते थे जिनको न्यूट्रलाइज करना बॉलीवुड फिल्मों को उनको लगा कि आप बॉक्स ऑफिस पे काम करेगा। 1967 के ठीक 20 साल बाद यानी 1987 में आई मिस्टर इंडिया। ये एक कल्ट क्लासिक बनी, बॉक्स ऑफिस के इसने रिकॉर्ड तोड़े। और मिस्टर इंडिया में एक साधारण इंसान साइंस के गैजेट की वजह से दुनिया बदलना चाहता है, भारत को बदलना चाहता है। और यहाँ देखें तो यहाँ जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो किसी परग्रही से नहीं है, यहाँ एक्सटर्नल थ्रेट है मोगैम्बो से। मोगैम्बो एक पड़ोसी मुल्क का जनरल है, और आप अगर देखेंगे ये फिल्म बन रही है जनरल जियाउल हक के टाइम, जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक राज कर रहे थे, और उन्होंने ऑपरेशन टूपैक लॉन्च किया था जिसका पर्पस ये था कि टू मेक इंडिया ब्लीड फ्रॉम 1,000 cuts। ठीक वैसे ही मोगैम्बो भी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कराता है, भारत में थोड़ा माहौल खराब करवाता है, और मिस्टर इंडिया उसको कॉम्बैट करता है।
इस मुल्क में हमारे 1,00,000 से भी ज्यादा शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं।
मिस्टर मोगैम्बो, मिलावट वाले अनाज से भी करोड़ों का मुनाफा हो रहा है।
खुश हुआ। यहाँ भी आप देखिए कि साइंस तो है, लेकिन पॉलिटिक्स और खासकर एक्सटर्नल जो रिलेशंस हैं कितना शेप कर रहा है एक फिल्म के नैरेटिव को। ठीक ऐसा ही कोई मिल गया आई, क्रिश आई 2006 में। अब क्रिश का जो पर्पस था वो पॉलिटिक्स से थोड़ा हट गया। पॉलिटिक्स तो रहा, लेकिन जिस पैराडाइम शिफ्ट जो पॉलिटिक्स में ये हुआ कि आप न्यूअर टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय कैसे करेंगे, ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे, मोनोपोलाइज कैसे करेंगे, मार्केट कैसे करेंगे, ये कृष्ण ने हमको दिखाया कि वो मशीन जिससे आप फ्यूचर देख सकते हैं, उस मशीन को आप जनहित के लिए रखेंगे या किसी कॉरपोरेशन, किसी इंसान या किसी एक समुदाय या धर्म या देश की उन्नति के लिए उसका प्रयोग होगा। क्रिश के हिसाब से ये एक मानवता, पूरी मानवता की भलाई के लिए ऐसी मशीनों का, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई प्रौद्योगिकी हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये दो फिल्में, तीन फिल्में मैं कहूंगा, मिस्टर इंडिया, क्रिश और कोई मिल गया, जो सुपर हीरो जॉनरे को हमारे यहाँ लाती हैं और उनको अप्रोप्रिएट करती हैं और उनको फर्दर करती हैं।
आपने बात की कोई मिल गया, क्रिश या क्रिश 3, जिस पर कहीं तरह से आरोप लगाया कि ये हॉलीवुड से, हॉलीवुड की फिल्मों जैसे ईटी, पेचेक या एक्समैन से प्रेरित हैं। तो ये आम धारणा है कि भारतीय विज्ञान फिल्में, ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्में हॉलीवुड से ही प्रेरित होती हैं। कहाँ तक सही मानेंगे आप इसको?
देखिए, ये बात तो मैं आपकी मानूंगा कि ये कई हद तक प्रेरित होती हैं, लेकिन जो लफ्ज का मैं इस्तेमाल करूंगा वो है अप्रोप्रिएशन, क्योंकि एक नैरेटिव को लेके उसको इतना अप्रोप्रिएट करके भारत में डिप्लॉय किया जाता है कि आप कह नहीं सकते कि ये कहाँ से लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक्शन रिप्ले, एक 2010 की फिल्म है, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये फिल्म बैक टू द फ्यूचर जो हॉलीवुड फिल्म है उससे सीधा कॉपी की गई है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो कहते हैं हमने तो उनसे ली नहीं, हमने तो गुजराती प्ले से ली है। अब यही सेम चीज और कोई मिल गया कि आप बात करते हैं तो राकेश रोशन को ये कहते हैं कि नहीं, ये तो साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये तो ऐसे ही हमने मतलब बच्चों के लिए बना दी थी। प्रोड्यूसर जो भी कहे, ये बात तो खैर सही है कि एक बहुत ही हेल्दी SF ट्रेडिशन जो रहा है हॉलीवुड में, हमने उससे कॉपी भले ही किया है, बहुत बार किया है, लेकिन हमने सिर्फ कॉपी नहीं किया, हमने उसको अप्रोप्रिएट भी किया है। और ये कितना सही है, कितना गलत, वो दूसरा डिबेट है, लेकिन ये बात जरूर है हमने जो सिमेंटिक एलिमेंट्स साइंस फिक्शन के हैं, जो हॉलीवुड फिल्मों में पाए जाते हैं, उनको जरूर यूज किया है और बहुत पनाश के साथ यूज किया है, और कभी कभार जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा ही यूज किया है।
सामी, हॉलीवुड की अगर SF ट्रेडिशन की बात करें तो विज्ञान फिल्मों में, विज्ञान कथा फिल्मों में टाइम ट्रेवल और रोबोट्स के बिना पूरी नहीं हो सकती वहाँ की फिल्में। इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि बॉलीवुड कैसे इस्तेमाल कर रहा है इन दो सब्जेक्ट्स का।
सबसे पहले तो टाइम ट्रेवल का एक मैंने आपको बताया था, 2010 में एक्शन रिप्ले एक फिल्म आई थी जो की बैक टू द फ्यूचर सीरीज जो थी उसका पूरा वहां से लिया गया था, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स, और बहुत ज्यादा चल नहीं पाई थी यहाँ। एक और फिल्म थी टाइम ट्रेवल की, लव स्टोरी 2050, जो 2008 में आई थी, और इसका भी बॉक्स ऑफिस का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था जितना हो सकता था।
यहाँ एक टाइम मशीन है,
पास में जाना आसान होता है, फ्यूचर में रिस्क है।
क्या टाइप किया मैंने?
मुंबई 2050।
बहरहाल ये दोनों फिल्में ज्यादा काम नहीं की, लेकिन इन दोनों फिल्मों के साथ कम से कम आपको ये तो मालूम चल गया कि बॉलीवुड भी टाइम ट्रेवल फिल्म बना सकता है। अब वो चले कि ना चले वो बात दूसरी है, लेकिन फिल्में बन सकती हैं, वो टेक्नोलॉजीज हमारे पास मौजूद है। बात की रोबोट्स की, तो आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो बॉलीवुड से नहीं है, वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है, यंत्रन का, जो रजनीकांत की फिल्म थी, और सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े। बहुत ही अच्छा उसका प्रोडक्शन रहा, पोस्ट प्रोडक्शन रहा, स्क्रिप्ट रहा, और उसने आई थिंक इट ट्रम्प रावण भी, मैं रोबोट तो खैर नहीं बोलूंगा, बट या इट वॉज अ नॉन ह्यूमन एंटिटी जो प्रोटैगनिस्ट था रावण। हम भी वही ट्रेडिशन यूज करना चाह रहे हैं, वही सिमेंटिक एलिमेंट यूज करना चाह रहे हैं जो कि हॉलीवुड SF में है, लेकिन उसको हम एक भारतीयता का वस्त्र पहना देते हैं, और कितना सक्सेसफुल हम होते हैं कितना नहीं वो बात दूसरी है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड।
अच्छा सामी, चलते चलते हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि बॉलीवुड में SF फिल्म्स का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है?
मेरे ख्याल से फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और उसका रीजन है कि फाइनेंसिस का जो इशू था पहले वो नहीं है, और जो प्रोड्यूसर है वो इस बात पे राजी है कि और पैसा फिल्मों में लगाया जा सकता है, तो फाइनेंसिस का इशू दूर हो गया है। सेकेंडली, टेक्निकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि पहले जो CGI या स्पेशल जो इफेक्ट लगते थे साइंस फिक्शन फिल्म में, नॉन माइमेटिक फिल्मों में, नॉन रियलिस्ट फिल्मों में, तो पहले किसी जमाने में बनाना मुश्किल होता था, लेकिन अब विद द स्टोर हाउस ऑफ CGI प्रोग्रामर्स विच इंडिया हैज, ये इतना मुश्किल नहीं रहा है। और तीसरी चीज, लोग ये चाहते हैं कुछ नया देखना, कब तक आप एक ही लव स्टोरी देखते रहेंगे, तो लोग भी चाहते हैं, तो मार्केट फोर्सेस भी एक डिमांड करती हैं बहुत बार कि कुछ नया देखने को मिले, विच इज वाई परहैप्स 2013 में गो गोवा गॉन आई थी, भारत की पहली जॉम्बी कॉमेडी फिल्म, लोगों ने उसको पसंद भी किया। ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स जो है, इसके हिसाब से आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अब मैं सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि जो बॉलीवुड एसएफ है वो सिर्फ हॉलीवुड को टेम्पलेट बना के वहां से कट कॉपी पेस्ट ना करे और अपना कुछ और थीम्स इवॉल्व करे और उसको अप्लाई करे।
सामी, SBS हिंदी से बात करने के लिए और वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर बीइंग हियर।